नंदीश्वर के भवन में राधा रानी सोई हुई है। सखियां भी उनके साथ विश्राम कर रही है। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद ही सभी जाग जाती हैं और आप सोने के झाड़ी में खुशबूदार पानी और सोने का बेसन लाकर राधा रानी का मुंह धुला देती हो। सखियां भी मुंह धो लेती हैं और आप सब श्रीमती को घेर के बैठ जाती हो। अब वो देखिए धनिष्ठा आ रही है। उसके हाथों में ये क्या है? छुपाकर ला रही है। अच्छा, ये तो श्रीमती का नील वस्त्र है। वो जो याद है आपको, निशांत में बदल हो गया था। हाँ हाँ, वही। अब वो विशाखा के हाथों में दे देती है। विशाखा कन्हैया जी के पीले रंग का वसन धनिष्ठा के हाथों देती है और फिर धनिष्ठा उसको बाद में सुबल के पास भेज देगी। अब सखियों भी श्री श्री राधा श्याम के इस वस्त्र का अदल बदल हो जाने के बारे में बहुत हास परिहास हो रहा है। आप सभी आनंद रस में डूब गए हो और अभी अभी तुंगा विद्या विशाखा के कान में क्या बोल रही है? कुछ तो बोल रही है, क्योंकि विशाखा भी बहुत मधुर हंसकर वो अपनी कंधे को थोड़ा सा स्टाइल में झुकाकर कुछ अनुमोदन कर रही है, अर्थात कि वो भी सपोर्ट कर रही है। राधा रानी उन दोनों की मधुर हंसी देखकर उनके दिल को तार जाती है। वो कहती है, ओ सखी, तुम लोग होठों को दबाकर पता नहीं क्यों मुस्कुरा रही हो और कानों में फुसफुसा रही हो। मुझे तो तुम लोगों का प्लान कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो मैं बेवकूफ हूँ ही, ऊपर से एक खानदानी बहू हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से अभी उठ जाना चाहिए। ये कहकर श्रीमती उठ जाती हैं और अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब विशाखा उन्हें रोककर हंसती हुई कहती है, ओ मेरी प्यारी सखी, तुम इस तरह से झूठ मूठ की शंका न दिखाओ। हमें पता है तुम्हारे दिल में कौन सा लड्डू फूट रहा है। नहीं तो भले हम कानों में बातें करें, हम होंठ दबाकर मुस्कुराएं, तो तुम्हें क्या? इसी वक्त सुचतुरा धनिष्ठा राधा रानी से कहती है, सखी राधे, ये सखियां हैं ना, ये बहुत ही कुटिली दिमाग वाली हैं। इनके साथ तो तुम्हें जरा भी नहीं रहना चाहिए। आओ चलो, हम दोनों चलते हैं। वहाँ बगीचे में जाकर तुम्हारी सूर्य पूजा के लिए बंधुक फूल चुनते हैं। आओ चलो। कहकर धनिष्ठा श्रीमती के हाथ पकड़कर नंदीश्वर पर्वत के वहाँ एक बहुत ही दिव्य उपवन है, वहाँ ले जाते हैं। आप भी श्रीमती के पीछे पीछे उस बगीचे में प्रवेश करती हूँ। देखिए तो ये बगीचा कितना दिव्य है, मनोहर है। वो देखिए, यहाँ पर तो छह ऋतुएं एक साथ मौजूद हैं। वहाँ आम का पेड़, ये फनस का पेड़, नारियल का पेड़, गुवाक, खजूर, कदम, पारिजात, कितने सुंदर सुंदर पेड़ है ना यहाँ। और वो देखिए लताएं, वाह, वे भी बड़ी खूबसूरत हैं। ये कौन सी लता है? माधवी। और वो सफेद फूलों वाली मालती, ये युति। और वो नवमल्लिका। ये सब खूबसूरत लताएं वृक्षों को आलिंगन कर रही हैं। वृक्ष फल और फूलों से परिशोभित है और कितने सुंदर पक्षी
की मधुर झंकार सुनाई दे रहा है। वो सुनिए, कोयल बुला रहा है और भौड़े तो बिल्कुल म्यूजिकल स्वर में झंकार कर रहे हैं। ओह सच, नंदीश्वर के इस बगीचे में क्या सुंदर सुंदर पक्षी हैं। और ये पथ जो बगीचे के बीचों बीच जा रहा है, ये भी कितना विचित्र मणिमय है। यहाँ कितने अलग अलग जेम स्टोन के फुटपाथ बने हुए हैं। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं और हर वृक्ष को सुंदर लताएं आलिंगन कर रही हैं। वृक्षों के पत्ते बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर एक घना छाया विस्तार कर रहा है। और इन वृक्षों के नीचे विविध रत्न के बने हुए बेंचेस भी हैं। यहाँ पर जीवन चलकर बैठेंगे क्यों। और इसी बगीचे में एक बहुत खूबसूरत सरोवर है। बताइए तो इसका नाम क्या है। हाँ, आपने ठीक समझा, गुप्तकुंड। इसकी सीढ़िया देखिए कैसे मणियों से जड़ा हुआ है। ये कुंड बड़ा ही मनोहर है। इसका जल तो देखिए कितना निर्मल है और इसमें सफेद, नीला, पीला और लाल रंग की कमल शोभित है। पक्षियों का कलकुजन सुनाई दे रहा है ना आपको। हाँ, यहाँ तो वृंदावन में पक्षी भी परमहंस तो मुनिगण हैं। ये भी महाभाव में निमज्जित रहते हैं और उनका कलकुजन भी किसी बहुत ही उत्कृष्ट संगीत से कुछ कम नहीं। हंस, सारस, कितने ही रंग बिरंगे पक्षी हैं यहाँ। इस सरोवर के घाट को तो देखिए रत्नों से जड़ा हुआ है और घाट पर कितना सुंदर मंडप है, झूले लगे हुए हैं, मणियों से बने हुए छोटे छोटे बेंचेज हैं और कुछ पिलर्स भी हैं। चारों तरफ सुंदर कुंज हैं और इन कुंजों में भी कितने फूलों के बने हुए वेदियां हैं, बेंचेज हैं, मणियों के ऑल्टर्स हैं। कुंज के पश्चिम की तरफ वो जो निकुंज दिख रहा है ना, हाँ वो बड़ा सा जो निकुंज है, बहुत सुंदर सा, हाँ हाँ वही, उसका नाम है अशोका नंदन। उसमें एक वन देवी रहती है, उसका नाम है वीरा। वो तो हमेशा राधा श्याम सुंदर जी की सेवा करती रहती है। उसने फूलों की शैया बनाकर रखा है। उस निकुंज मंदिर के चारों तरफ देखिए चार कल्प वृक्ष है और ये ऊपर एक दूसरे से मिलकर कितना सुंदर एक मंडप जैसा बना हुआ है। इन वृक्षों में फूलों से लदी हुई लताएं जा रही है और ये लता, वृक्ष के पत्ते, उनके फूल सब मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा फूल का अम्ब्रेला। फूलों की खुशबू से आकर्षित होकर भौरे झुंड के झुंड मधुर रस विलास कर रहे हैं। वो सुनिए कोयल कैसे मनोहर कुहू कुहू बोल रहा है। और कोयल की बोली सुनिए, और ये बोली राधा श्याम सुंदर में मदन रस जगा रहा है। कुंज की चारों तरफ चारों द्वार में फूलों से बने हुए डोर्स हैं और कुंजों के बीच मणि का बना हुआ पलंग है और उसकी
बिछाए हुए हैं। पलंग के चारों तरफ चम्मच, पंखा, तंबूल के पात्र, सुखदानी और खुशबूदार जल से भरा हुआ सोने की झाड़ियाँ है। ये सब छोटे छोटे सोने के चौकी में सजा कर रखे हैं। कहा कोयल की बोली तो पागल कर देगी। राधा जी बिखोरी हुई है प्रीतम की याद में। कोयल की बोली सुनकर ये विरह में आकुल हो रही है। श्रीमती इस बगीचे की मनोहर शोभा दर्शन कर रही है और आकर गुप्त कुंड के तीर में बैठ गई है। वो श्याम सुंदर से मिलन के लिए उत्कंठित है, बहुत ही इंपेशेंट हो गई है। उपवन को देखकर, पंछियों का कलकुजन सुनकर मदन रस में डूबी जा रही है राधा रानी प्रीतम जी के विरह में। हाथ में चेहरे को धर कर बैठी हुई है वे कितनी खूबसूरत लग रही है। सच प्रिया जी जब खोई हुई होती है प्रीतम की याद में तब उनकी खूबसूरती तो कुछ और ही हो जाती है। प्रथम ही हृदय प्रेम उपजाए, प्रेम को अंकुर गिरह बढ़ाए। पहले तो प्रिया जी के दिल में प्रेम उपजाया, उभर आया और फिर इस प्रेम का अंकुर बढ़ता गया बढ़ता गया। श्री आबे तुरु और श्री फल भास तो ही सौलो बोले मोनो मोती मिलो बास। वही प्रेम श्रीमती का पूरा अंग बन गया है। दूसरों के अंदर प्रेम होता है जबकि श्रीमती वो तो प्रेममयी है और इसी प्रेम के तरु पर उनकी बक्षोत से श्री फल अर्थात सीता फल जैसे दिखने लगे और इसी के नीचे काम दे वो तपस्या करने लगे। माधव कौके बिछड़ली बड़ो नारी, बड़ो पूरी हर गुण दोष बिचारी। ए माधव तुम कैसे भूल सकते हो इतनी सुंदर नारी को। आहा तुम ही सोचो, गुण और दोषों का विचार तो करो। उसमें तो दोष है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ गुण ही गुण है माधव। और ये प्रेम का वृक्ष दिन ब दिन बढ़ रहा है। नयन और सरोज दुहु बहु नीर, काज और पोखरी पोखरी पोलचीर। ए कन्हैया उसके नयन कमल जैसे हैं और दोनों से इस तरह जल बह रहा है। काजल धो धो कर उसके वसन से गिर रहा है। ते ही तिमी तो भेलो उराज सुबेश, मृगो मधे पूजलो कानो को महेश। उसका सुंदर उरज तन भीग गया इस धुले हुए काजल से और अभी उनके स्तन इतना सुंदर दिख रहा है जैसे कि सोने के बने शिवलिंग की आप कस्तूरी से पूजा कर रहे हो। सोने के बने शिवलिंग पर अगर आप कस्तूरी से तिलक बनाओगे तो वो कितना सुंदर लगेगा। जब राधा जी रोती हैं और उनके काजल धुल कर उनके वक्ष पर गिरते हैं तो ऐसा ही लगता है। काजोरे बाहु उड़ोगो लिखो कागो, बीसो मलय जपुनो मलय जपांको। काजल की दाग उनके बाहों पे लग रही हैं, उनके उलझ पर जैसे कि कोई प्रेम पत्र लिख रहा है काजल। और उनके वक्ष में जो चंदन का बना हुआ डिजाइन है वो भी सब धुलकर एक केस बन चुका है। चांद पवनो तीखो मदनो तराशो सरो गदो गदो घनो छारो निशासो। प्रिया जी का प्रेम इतना ज्यादा है कि चंद्र की किरण भी उनके लिए विस्मय लगता है। जब हवा का अच्छा झोंका बहता है तब वो और भी दुखी हो जाती है। कोयल का कुहू लव सुनकर उनका मदन वेग और बढ़ता है। उनका स्वर गदगद हो जाता है और वो जल्दी जल्दी सांसें लेने लगती हैं। आपकी पियाजी की ये दशा देखी नहीं जाती और आप कह पड़ते हो, राधी थोड़ा तो धीरज धरो, वो अभी आ जाएगा। प्रीतम जी तुमको कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने जब वादा किया है वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे। थोड़ा सा धीरज धरो सखी। प्रिया जी जवाब देती है, ना कहो सखी मुहि पूरी बोध हो, जीव की देह अब कानू निरोध हो। मुझसे मत बोलो सखी और मुझे सांत्वना देने की कोई कोशिश मत करो। कानू का अनुराग मुझे जीने थोड़ी देगा। कानू से अब मोर छे कानू कोरू ना गैलो लाज धीनो कोरू ना। वह तो ऐसे निर्दय है, देखो ना उसका व्यवहार कितना निष्ठुर है। औलो को बोलो से हम कानू से तोड़ू ना, ओती हूँ लाज डॉर ओती हूँ कोरू ना। मेरी तो कितनी कम उम्र है और कानू वो तो तरुण हो चुका है। मैं तो लज्जा से डर से मरी जाती हूँ। देनो आलिंगन भुजो जुगो चापी, सोई खुन हृदयो उठलो मोर कापी। पता है उसने क्या किया, उसने मुझे अपनी बाहों से इतना जोर से आलिंगन किया कि मेरा तो दिल कांप उठा। लो भी निखिल होड़ी कर नहीं तेरी, कि कहो को जामिने जा तो दुख देरी। वह लोभी वो निष्ठुर, उसने तो ऐसे ऐसे प्यार का दिखावा किया। क्या कहूँ मैं, पूरी रात मुझे दुख ही दुख देता गया। मैं तो दर्द के मारे मरी जा रही थी। हाथ भेलो रोशन हर ध्यान निजी फूलो ने कही कहो न के जानो। वह तो इतना हटी निकला, कोई ज्ञान ही नहीं था उसका तो। शुद्ध बुद्ध खो बैठा, पता नहीं कब मेरा निजी बंधन खोल दिया उसने, कौन जाने। नायो ने बारी दर्शाए लो रोई, तब कानू उपशम नहीं होई। मैं तो इतनी रो रही थी लेकिन फिर भी उसका तो कोई उपशम ही नहीं हो रहा था। वो निश्चुर कान्हा वो तो मुझसे वार के वार करता हुआ जा रहा था। औदर निरोश मौजू करु नहीं मंदा, राहु गड़ा से निशी तेजल चंदा। मेरे होंठ सूख कर पीले हो गए और फिर भी कुछ उम्र रहा था पागल की तरह, जैसे कि राहु ग्रास कर लेता है चंदा को। कुछ जुगे दिलो नोख पोर हौड़ी, केसर जनो बज कुंभ बिदारी। उसने मेरे कूचों पे मेरे स्तनों पे ऐसे नख का निशान बना दिया जैसे कि सिंह वे हाथी का कुंभ अर्थात हाथी के सर पे जो कुंभ होता है उसे अपने नख से कैसे चीर देता है, उस तरह से उसने मेरे स्तनों को नख से चीर दिया। भनई विद्यापति रसवती नारी तुम सुचेतन चतुर मुरारी। कभी विद्यापति कह रही है, नहीं राधे मैं तो ये बात मानने को जरा भी तैयार नहीं हूँ। तुम बड़ी रसवती हो और तुम ये परिहास कर रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कान्हा ने तुम पे जबरदस्ती की और तुम बस यूं ही सहती नहीं। हाँ, मुरारी तो चतुर है ही, पर तुम भी कुछ कम नहीं हो। ठीक उसी वक्त वो देखिए श्याम सुंदर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर राधा जी से मिलन के लिए उत्कंठा है। वे अपने बेडरूम से छिपकर आ रहे हैं और वे यहाँ वहाँ वन की शोभा दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया जी को देखकर और उनके सुंदर अंग की खुशबू को पाकर मोर दीवाने हो जाते हैं। वे अपने पंख को फैलाकर केका बोलकर नृत्य करने लगते हैं। पंछी और भौरे भी देखे जैसे मधुर स्वर में गान करने लग गए हैं, क्योंकि कन्हैया जी तो इन सब का सखा है ना। मोर को देखकर कन्हैया जी बड़े खुश हो जाते हैं, सोचते हैं वाह ये मेरे मोर सखा कैसे पंख फैलाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको कैसे खुश करूं। इसलिए वे भी अपने हाथों के बल खड़े हो जाते हैं और अपने नीले नीले पैरों को एक जापानी पंखे की तरह फैला फैला कर नाचने लगते हैं। हाथों पे नाच रहे हैं, देखिए कन्हैया कैसे। उनको देखकर मोर और जोर से नाचने लगते हैं खुश होकर, तो उनके पंख गिरते हैं। कन्हैया जी सोचते हैं आहा देखो मेरा नृत्य देखकर मोर मुझे प्राइज दे रहा है। इसलिए वे अपने इन मोर भक्तों के पंख को मिट्टी से उठाकर अपने सर पे धारण कर लेते हैं, क्योंकि भक्त का प्रेम से दिया हुआ उपहार वे तो अपने सर पर ही धरते हैं। राधा जी कन्हैया जी को देखकर और उनके मधुर नुपुर की ध्वनि को सुनकर वे बोलने लगती हैं, ललिता विशाखा ये क्या, ये एक नया मेघ दिख रहा है। आहा इस बादल पर मुझे एक स्थिर बिजली दिख रही है, इंद्रधनुष है, बकमाला है और मुझे पक्षियों की कलकूजन सुनाई दे रही है। ललिता कह रही है ओ सुमुखी तुम जो कह रही हो वैसा नहीं है, तुम्हें तो भूल हो रही है, बहुत ज्यादा मादन रस की वजह से तुम्हें भूल हो रही है। ये जो नया बादल दिख रहा है ना, ये और कोई नहीं तुम्हारा प्राणनाथ है, और उनके चूड़ा पे वो जो मोर पंख दिख रहे हैं उन्हें तुम इंद्रधनु सोच रही हो। वे कितने सुंदर पीतांबर पहने हुए हैं, उसी को तुम स्थिर बिजली समझ रही हो, और उनके गले में जो मोतियों की माला है उन्हें तुम बगुले सोच रही हो। उनकी कमर में एक छोटी सी घंटी बंधी हुई है और उनके सुंदर चरणों में नुपुर हैं। इन सबकी ध्वनि को ही तुम हंस और सारस का कलकूजन सोच रही हो। अच्छा तो प्राणवल्लभ आ गए। ओहो ये सुनते ही देखिए प्रिया जी कैसे अशोका नंदन कुंज में छुप रही है। अब कन्हैया जी आकर आप सब लोगों की तरफ ताकने लगते हैं। कहाँ है राधा? राधा तो नहीं है। वे आपको पूछते हैं सखियां राधा कहाँ है? आप सब कहती हो श्याम वो तो यहाँ पर नहीं आई। कन्हैया जी पूछते हैं तो फिर मुझे उनके अंग का खुशबू कहाँ से मिल रहा है? आप कहती हो हम हमेशा उनके साथ रहती है ना, इसीलिए हमारे अंग में उनके अंग का खुशबू लगा हुआ है। बोली मनोहर पूछते हैं, राधा रानी से जुदा होकर तुम लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकती हो। चाँद के बिना क्या चाँद की किरणें हो सकती हैं भला? सखियाँ जवाब देती हैं, ओए यहाँ कोई चंद्रावली नहीं है, ये जो चाँद की किरणें देख रहे हैं ना तुम्हें, ये सब वृषभानु नंदिनी की खूबसूरती का अपूर्व प्रकाश है। आप सब लोग इस तरह से परिहास करने लगते हो। मोहन श्रीमती को न देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। तब वीरा देवी आंखों के इशारे से कुंज की तरफ दिखा देती हैं। कन्हैया जी तुरंत उस कुंज में प्रवेश करते हैं। सर्वत्र उनको राधा ही राधा दिखाई देती है। वे राधा के भ्रम में वृक्ष को बाहों में भर लेते हैं, लताओं को अपने वक्ष से लगा लेते हैं। यह देखकर प्रेममयी राधे उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब उनकी प्रेम की धूल दूर हो जाती है। रसराज और महाभाव का मिलन होता है। प्रेम रस सिंधु में लहरें खिलने लगती हैं। दोनों प्रेम रस में मगन हो जाते हैं और उसी माधुर्य के सागर की लहरों में आपकी नैनें शफरी मछली की तरह तैरने लगती हैं। अब चलिए नवद्वीप चलकर देखते हैं हमारे दो सुंदर क्या कर रहे हैं।